खुदावन के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का बंदा पालूस रसूल उस वक्त की कलीसिया को जो इफिसस में थी और आज हम जो मौजूदा कलीसिया हैं यीशु मसीह में हैं, हम सबकी तरबियत और नसीहत के लिए, रूहानी तरक्की के लिए कहता है 18वीं आयत में, शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है। ये बिल्कुल दुरुस्त और सच है, इसमें कोई शक नहीं कि जब कोई शराब के नशे में मतवाला होता है वो बेवकूफ हो जाता है, उसे किसी बात की समझ नहीं होती। रात का वाकया है कि कैसर उसने शराब पी और अपने छोटे बेटे यूहन्ना को बेवजह मारना शुरू कर दिया। तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? शराबी को शराबी के हाथ पर छोड़ देना चाहिए? अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि वो बच्चे को मार दे। तो कल रात पादरी साहब ने कलाम ही नहीं सुनाया बल्कि हाथ भी चलाया और उस शराबी को उसके नशे को उतारा, नहीं तो बच्चा मर जाना था। आज हमने कब्रिस्तान जाना था किसी की मैयत लेके। तो शराब में मतवाले ना बनो बल्कि इससे बाज रहो क्योंकि इससे बद चलनी, इससे हर तरह की क्या कह सकते हैं कि खुदगर्जी इंसान में आती है। जब बंदा खुदगर्ज होता है वो अपनी खुदगर्जी में अंधा हो जाता है और एक बात के पीछे लग जाता है और उसी को वो करता है करता है करता है जब तक उसका नशा उतर ना जाए। तो पालूस रसूल कहता है कि शराब में मतवाले ना बनो बल्कि किस में मामूर हो। किस में हमें मामूर होना है? रूह में। क्या लिखा है? शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। याद रखें, हमें रूह से मामूर होना है और रूह से मामूर बहुत दफा हम इस शोशोपन में रहते हैं कि क्या करें। जब बेइंसाफी को देखें तो बहुत दफा हम सोचते हैं कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। अगर हमसे कुछ बन पड़ता है कि कोई किसी की मदद करे तो रूह से मामूर, रूह की सुनकर हमें ऐसा करने की जरूरत है। कल रात मैं इसी बात पर फिक्र से सोच रहा हूँ कि खुदावन जो मैंने किया उस बच्चे के बचाव के लिए क्या वो दुरुस्त था? क्या जो मैंने उस बच्चे को बचाने के लिए किया क्या वो तेरी नजर में दुरुस्त है? बार बार अबलीस की तरफ से यही मुझे बोझ या कह सकते हैं आजमाइश या झूठ, लोग क्या कहेंगे कि पादरी साहब ने अपने भाई को मारा? तो आकर नतीजे पर ही पहुंचा कि लोगों को छोड़ खुदा को सुन के खुदा क्या कहता है। क्योंकि पुराने नामों में नए नामों में हमें बहुत से ऐसे वाक्यात नजर आते हैं जिनमें खुदा बार बार कहता है कि इंसाफ के लिए खड़े हो, सदाकत के लिए खड़े हो। इसलिए आप भी जब बेइंसाफी देखें तो हम अय्यूब की तरह अंधों की आंखें बने, गुमराहों के लिए गुमराही नहीं बल्कि दुरुस्तगी की राह बने। सो आज हमारा ये टॉपिक नहीं, लेकिन इससे पहले कि आप तक कोई बुरी खबर पहुंचे कि पादरी साहब ने किसी को थौड़ों से मारा है, नहीं, पादरी साहब का हाथ ही थौड़ा है। सो ना 19वीं आयत, आपस में मजामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। ये हर एक ईमानदार के लिए है जो हमने पिछले दिनों में सच सीखा है कि हर एक ईमानदार पर ये फर्ज है। जबूर 33 उसमें उसकी पहली और दूसरी आयत कहती है, ऐ साधको खुदावंद में शादमान रहो, यानी कि खुश रहो, खुशी मनाओ और प्रस्तुत करना रास्तबाजों को क्या है?
जेबा है
रास्तबाजों के लिए। और खुदा कहता है कि खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो उसकी प्रस्तुत रूह और सच्चाई से करें। तो रूह और सच्चाई से हमें प्रस्तुत करनी है। जब हम रूह से मामूर होंगे तो मजामीर और गीत और रूहानी गजलें नतीजे में निकलेंगी। हम दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहें। और 20वीं आयत, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो सब बातों में। इस बात पर हमने कल गौर की थी कि कौन कौन सी बातें हैं जिसमें हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। क्या दुख में भी खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए? दुख में भी करनी चाहिए। चाचा जी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे साथ, एक हवाला देके पुराने अहदनामा में से, अय्यूब की किताब उसका पहला बाप उसकी 21वीं आय, कि अय्यूब हमारे सब के लिए जिंदा मिसाल है, जो सब्र की मिसाल है, शुक्रगुजारी करने की मिसाल है, ईमान में मजबूत रहने की मिसाल है, और हमारी जिंदगी में रूहानी जंग जो लगी हुई है उस रूहानी जिंदगी के बारे में मिसाल है। अय्यूब की किताब आपको पुराने अहदनामा में आस्तर की किताब के बाद या जबूर की किताब के पहले मिलेगी। अय्यूब पहला बाब जब हम उसकी 21वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ पर पिछले वो तमाम हालात को जब गौर वफौज करते हैं, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ लुट पुट चुका है। और अय्यूब का रवैया क्या है? जब उसके पास सब कुछ था तब भी वो खुदा का शुक्रगुजार था, और जब उसके पास कुछ भी नहीं रह गया, सब कुछ उजड़ गया, तब भी वो खुदा का शुक्र करता है। क्योंकि पहली पांच आयत में जब देखते हैं, पांचवी आयत में, कि वो अपने बेटों के लिए जियाफत में जब इकट्ठे हुए तो कुर्बानी चढ़ा रहा है। और पुराना अहदनामा कुर्बानियों के बारे में बयान करता है, नजर की कुर्बानी, शुक्रगुजारी की कुर्बानी, कफारे की कुर्बानी, और फिर सोक्तनी कुर्बानी और दूसरी कुर्बानियां। तो इनके पीछे यही है कि मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मेरे कफारे के लिए ये सब कुछ मुहैया करता है। तो वो खुशहाली में भी शुक्रगुजारी करता है और बदहाली में भी। क्या कहता है 21वीं आयत में, 20वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा, तब अय्यूब ने उठकर अपना पहनादा चाक किया, यानी कि जो चोला जो कपड़े उसने पहने हुए थे उसे उसने चाक किया यानी कि फाड़ा, और सर मुंडवाया यानी के शेव की जिसे कहते हैं टेंड करवाना, और जमीन पर गिर के सजदा किया। सजदा का लफ्ज पहली दफा पदेश की किताब में इब्राहिम की जिंदगी में इस्तेमाल हुआ था सबसे पहले पूरी बाइबल में, और सजदा का मतलब है प्रस्तुति करना, झुक जाना, शुक्रगुजारी करना, दुआ करना, अपने आप को अंधेल देना। नए अहदनामा में मजूसियों के लिए सबसे पहला लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कि कई मजूसी पूरब से पश्चिम की तरफ आए और मशरक से मगरब की आए, और उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया? सजदा किया। सजदे में शुक्रगुजारी, सजदे में ये बात पाई जाती है कि मैं शुक्रगुजार हूँ इस आला हस्ती के लिए जो इस लायक है। तो पहली दफा पदेश की किताब में सजदे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, जिसकी डेफिनेशन कह सकते हैं या तफसील, या तफसील क्या है कि शुक्रगुजारी करना, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, जिसमें मजामीर गीत और बुलंद आवाज से खुदावन के हजूर उसकी हम्द और सताइश आ जाती है। तो अय्यूब ने क्या किया? सब कुछ करने के बाद सजदा किया, और सजदा करते हुए क्या कहा? सजदा से हरगिज मुराद नहीं कि हम गिर गए, ये भी एक इजहार है, लेकिन यहां पर जो पालूस रसूल और अय्यूब के वसीला से बात हो रही है वो क्या है? सजदा किया और आगे क्या लिखा है? और कहा कि नंगा मैं अपनी मां के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावन ने दिया और खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो, मुबारक हो, यानी कि उसे वो मुबारक, उसे वो धन भाग। हमें नहीं पता कि उसका कैसा रवैया है, लेकिन इन लफ्जों से, इन सच्चाई से, इस सच्चाई से पता चलता है कि वो खुदा को मुबारक कह रहा, उसकी परस्तिश कर रहा है, उसे धन भाग कह रहा है। दूसरे लफ्जों में हर एक बात में खुदावन की शुक्रगुजारी करो। ये मुमकिन है कि नहीं? दुख में भी मुमकिन है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, सुख में भी मुमकिन है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। इसलिए ये मुमकिन है कि हर एक बात में हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ, शुक्रगुजारी करो। हम सबकी जिंदगी में बहुत से हालात आते हैं, चंगे माड़े। बहुत दफा हमें पछताना पड़ता है, बहुत दफा हम इंसान होते हुए गलती करते हैं, लेकिन उन गलतियों से सीख सकते हैं। बहुत दफा हम दुरुस्त तजर्बे से गुजरते हैं, उस तजर्बे में से गुजर कर हम दूसरों के लिए तजर्बा बन सकते हैं। इसलिए मेरे साथ एक और हवाला देखें शुक्रगुजारी के लिए, जबूर की किताब। अय्यूब के बाद आपको जबूर की किताब मिलेगी, जबूर 34 उसकी पहली आयत, जबूर 34 उसकी पहली आयत। यहां पर खुदा का बंदा दाऊद, खुदा का बंदा दाऊद जब उसके उस वक्त की बात है जब उसके बेटे अबीशलोम के साथ उसने अपनी सामने अबीशलोम के सामने अपनी वजह को बदल लिया, यानी कि वो ऐसा हो गया जैसे कमला है। ऐसा है कि उसने अपने हालात ऐसे कर लिए कि कोई उस पर उसके हालात देखकर रहम करे। 34वीं आयत में खुदा का बंदा, 34वें बाब में खुदा का बंदा दाऊद बजाय के अपने उस हालत पर जो उसने बनाई कि उसकी जान भी बच जाए, उसे महफूज किया जाए, उसने क्या किया, क्या कहा है? पहली आयत 34वीं बाब की पहली आयत, मैं हर वक्त खुदावन को मुबारक कहूंगा। मुबारक के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, आई विल गिव थैंक्स, थैंक्स। मैं हर वक्त आई विल गिव थैंक्स, मैं हमेशा खुदा का शुक्र करूंगा या खुदावन को मुबारक कहूंगा। मैं हर वक्त खुदावन को मुबारक कहूंगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। मुमकिन है अगर दाऊद, अगर अय्यूब, अगर यशाया नबी इन बातों को कह सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मेरे साथ एक यशाया का हवाला देखें, यशाया नबी का सहीफा उसका 63 बाप, 63 बाप उसकी 7 आए, यशाया 63 बाप उसकी 7 आए। यहां पर यशाया भी इसी बात की तरफ इशारा करता है। मैं खुदावन की शफकत का जिक्र करूंगा, शफकत यानी कि उसकी मेहरबानी, उसके करम, उसकी तमाम उन अच्छाइयों के बारे में। क्या कहता है यशाया? मैं खुदावन की शफकत का जिक्र करूंगा, जिसमें हम सब ये बात कह सकते हैं, खुदावन ने मुझे बुराई से बचाया, खुदा ने मुझे बीमारी से बचाया, खुदा ने मेरे बेटे या बेटी को शफा दी, खुदावन खुदा ने मुझे बचाया, या खुदावन खुदा ने मेरे वसीला से किसी को बचाया, तो मैं खुदावन की शफकत का जिक्र करूंगा, खुदावन की शफकत का जिक्र करूंगा। जबूर 107 में क्या लिखा है? खुदावन के छुड़ाए हुए यही कहें कि खुदावन की शफकत अबदी है। हम सब खुदा के छुड़ाए हुए हैं, सबको खुदा ने मौत के जुओं से छुड़ाया है, सबको खुदा ने मौत की वादी में से निकाला है, सबको खुदा ने कब्र की रस्सियों से रहाई दी है। इसलिए हम सब कह सकते हैं, मैं जो खुदावंत का छुड़ाया हुआ हूँ उसकी शफकत का जिक्र करूंगा। तो यशाया कहता है, मैं खुदावंत की शफकत का जिक्र करूंगा, खुदावंत ही की सताइश का, उसकी शफकत का, खुदावंत ही की सताइश का, उसके सब उस सब के मुताबिक जो खुदा ने हमको अनायत किए हैं, और उस बड़ी मेहरबानी का जो उसने इसराइल के घराने पर अपनी खास रहमत और फरावान पर ऊन शफकत के मुताबिक जाहिर की है, कसरत की शफकत, खुदावंत की शफकत। फर्वान शब्द के मुताबिक, जिसका मतलब अंदाजन यही है कि फरावानी से भड़कोती से और बेतहाशा किसे कहते हैं, हमें उसकी शफकत का जिक्र करना है। इसीलिए पालूस रसूल कहता है, इफिसियों 5 बाब उसकी 20वीं आयत में, और सब बातों में हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा के नाम से क्या करो, खुदा का शुक्र करते रहो। यीशु मसीह के नाम में सब बातों में, पहली बात ये हमारी बुनियाद है कि सब बातों में किसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से, और खुदा बाप का क्या करना है, शुक्र करना। इसलिए हम ईमानदारों को बहुत दफा नहीं हमेशा, बाबताबक बाइबल मुकद्दस अबलीस हमेशा कहता है कि हम सोगवार रहें, हमेशा कहता है कि हम पर वो नाजिश करता रहता है। नाजिश से मुराद यानी कि अल्जाम लगाना, वो हम पर अल्जाम तराशी करता रहता है। और ये बिल्कुल सच है, कल रात मैंने बहुत से हवाला जात को देखा, कैरी ने भी मुझे कहा कि हाँ तूने दुरुस्त किया उस छोटे यहन्ना को बचा के। इसलिए दुनिया की क्या, दुनिया किसी की नहीं बनती, लेकिन जो समझदार है वो कहेंगे कि हाँ तूने बिल्कुल ठीक किया उस बच्चे को बचा के, जिसे उसका बाप बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए हम भी बहुत दफा ऐसे काम जो दुनिया की नजर में तो नागवारा नजर आ सकते हैं, ठीक जैसे अय्यूब ने, जैसे उसके ऊपर हालात गुजरे थे, उसकी बीवी के मुताबिक यही था कि तू खुदावन पर लानत कर और मर जा, अपनी कहानी खत्म कर दे। लेकिन उसने उसकी अपनी कहानी को वहां पर खत्म नहीं किया, उसने कहा मैं नंगा अपनी माँ के पेट में से आया और नंगा ही वापस जाऊंगा। उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। तो लफ्ज मुबारक, लफ्ज सजदा और शुक्रगुजारी, ये तीनों ऐसे हैं, सजदा दुआ सताइश झुक जाना, अपने दिल को अंधेलना या इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहली दफा इब्राहिम की जिंदगी में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जब वो पहाड़ पर गया तो उसने खुदावन के हजूर क्या किया, सजदा किया। कई मजूसी जब यीशु मसीह को देखने के लिए आए तो उन्होंने क्या किया, सजदा किया, खुदावन को मुबारक कहा, उसकी सताइश की, उसके नाम को धन्यवाद कहा। खुदावन का भी पहली दफा लफ्ज जब हम पदेश की किताब में जाते हैं तो हमें वहां पर नजर आता है, चौथे बाब के आखिर में, कि वहां पर पहली दफा लोगों ने खुदावन का नाम लेकर दुआ करना शुरू किया। खुदावन का मतलब है इसराइल की अमीद या हाक में आला वाहद, वही हस्ती जो उस जैसा कोई नहीं है। तो खुदावन, जब हम नाम लेते हैं, नाम बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है, क्योंकि हमें बाइबल मुकद्दस में बार बार पालूस रसूल, यीशु मसीह, तमाम नबियों के वसीला से, सब मेरे साथ इजाद कर करो कहें, और सब बातों में हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। किसके नाम से, खुदावन यीशु मसीह के नाम से। नाम बहुत अहम है, नाम से पहचान होती है कि हम किससे बात कर रहे हैं। अगर हम बाल का नाम लेकर दुआ करेंगे तो हमारी दुआ नहीं सुनी जाएगी, अगर हम किसी और फलस्तीनी या यूनानी खुदा का नाम लेकर दुआ करेंगे तो दुआ नहीं सुनी जाएगी, या अगर हम किसी और यूनानी या फलस्तीनी या मुआबी या मिस्री खुदा का नाम अपने नाम से जोड़ेंगे तो हमारी पहचान नहीं होगी। हमारी पहचान कैसे है, यीशु मसीह से। कहते हैं ना रफीक मसीह, फैसल मसीह, हनीफ मसीह, गुलाम मसीह, मुबारक मसीह, सनिया मसीह, कहते हैं ना किससे? मसीह के नाम से हमारी पैदाइश पहचान है। सो बाइबल मुकद्दस में जहां कहीं भी खुदावंत यसु या यसु के या खुदा के या खुदा के नाम से, तो उसके पीछे बहुत गहरा तल्लक है पाकरू का लिखने का, ताकि पहचान हो कि वो किससे बात कर रहा है। तो हमारी पहचान क्या है? यसु मसीह। सो इसीलिए पैदाइश की किताब में जब हम देखते हैं, आप हवाला घर जाकर पढ़ सकते हैं, वक्त कम है, पैदाइश चार बाब जब हम देखते हैं, उसकी 25-26वीं आयत में, जब सेत के हाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा, उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। यहोवा एलोहीम, वाहद हस्ती जो प्रस्तश और सताइश के लायक, यहोवा जिसे उर्दू में यहोवा कहते हैं, इंग्लिश में भी, अब्रानी में भी यहोवा कहते हैं, और फिर यहोवा के साथ साथ तर्जमा किया जाता है लॉर्ड, LORD, लॉर्ड, जिसका मतलब है खुदावंद, खुदावंद या हाक में आला या मालक या उस्ताद या रब्बी या खुदा। सो ये पहली दफा इस्तेमाल किया गया था कि खुदा उस वक्त से जब अनूस पैदा हुआ खुदा उनका नाम लेकर दुआ करने लगे, यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। सो नाम में बहुत ज्यादा गहराई है, इसलिए हमें अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू में जब शुक्र करें तो उस नाम को ना भूलें। बहुत दफा हम नाम क्या लेते हैं, पैगाम रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं वो नाम नहीं लूंगा, क्योंकि खुदावन खुदा अपने कलाम में कहता है कि गैर मबूदों का नाम भी तेरे मुंह से ना निकले और ना ही उनका इकरार किया जाए। तो आए हम खुदा के हुजूर झुकें और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे।